तंत्र का स्व और स्त्री अस्मिता। दो तरह के प्रकाश वृत्त होते हैं, एक ढिबरी या लालटेन का प्रकाश वृत्त और दूसरा सड़क के लैंप पोस्ट का। इसी तरह स्वाधीनता भी दो तरह की होती है, एक सहज उपलब्ध और दूसरी वह जिसमें बार बार सीली माचिस जलाने का संघर्ष, बत्ती पूरने की दीर्घ सूत्रता, ढेर ढेर धुआं और आंसू शामिल हो। मर्द की, खासकर पश्चिम के गोरे धनी मर्द की स्वाधीनता राजपथ के लैंप पोस्ट की रोशनी है। वह एक दत्त प्रमेय है, उसे किसी आंधी का डर नहीं। आतंकवाद, युद्ध आदि स्थितियाँ, कभी थोड़ी देर बत्ती गुल कर भी दे तो कोई बात नहीं, फिर जुड़ जाएगा। स्त्री स्वाधीनता डिबरी का प्रकाश वृत्त है। उपनिवेश रह चुके भूखंडों में स्त्रियां दोहरे दोहन का शिकार थीं। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी उन्हें सड़क और मीलों तक लाकर सार्वजनिक स्पेस का हिस्सा बना गए तो भी घरे बाहरे का द्वैत बना ही रहा। पश्चिमी महिलाओं की तरह कोई सेफ्रोगेट आंदोलन नहीं चलाना पड़ा हमें वोट आदि डालने के मौलिक अधिकार के लिए, पर राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भी कुछ मौलिक समस्याएं जस की तस बनी रहीं। अशिक्षा, अस्वास्थ्य, बेइंतहा गरीबी, नून तेल लकड़ी का तक न जुटा पाने का विकट क्षोभ, प्रेमहीन विवाह बंधन, असुरक्षित और भावहीन संभोग, अनचाहे गर्भ के अनंत सिलसिले, साफ सुथरे प्रसव और गर्भपात तक की असुविधाओं का अभाव, मारपीट, गली गलौज, बलात्कार, यौन शोषण, घरेलू बेगार और कहीं कहीं तो संयुक्त परिवार के तिगुने चौगुने पुरुष पर चश्व का दबाव, इनके बीच इनकी अस्मिता अपनी हाजिरी लगा ही न पाई। फिलहाल विश्व बाजार का नव उपनिवेशवाद हमें अजीब घन चक्कर में डाले है। नन्ही बच्ची, गरीब बच्चियों का माल असबाब की तरह एड्स भीत उन्नत देशों में निर्यात, ब्यूटी प्रेजेंट्री की अंतर्राष्ट्रीय स्पॉन्सरशिप, सौंदर्य मिथ के अक्ष पर स्त्री का और बम और बोल बम बनाने वाले घर बाजार, दुनिया जहां सब पर कब्जा करने वाले शौर्य और अक्ष पर पौरुष का ध्रुवीकरण भी आज स्त्री जगत के बड़े प्रश्न हैं। मुक्ति वैसे हमेशा से एक दुरूह अवधारणा है। जिन दिनों मुक्ति का रूढ़ अर्थ केवल मोक्ष हुआ करता था, उन दिनों भी एक विकट विरोधाभास इसके साथ जुड़ा था। तब मोक्ष या मुक्ति का अर्थ था कामनाओं से मुक्ति। किशोरावस्था में बुद्ध बुद्ध पढ़ते हुए अक्सर हम इस भूलभुलैया में उलझ कर रह जाते थे कि कामनाओं से मुक्ति क्या स्वयं एक कामना नहीं है? कामनाओं से मुक्ति संभव ही है क्या? उनका दमन या उन्नयन तो संभव है, मगर उनसे छुटकारा, एक तरफ जो देह धरे को दंड है, सब काहू को होए का सामान्यकरण है, और दूसरी तरफ दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्ति का स्रोत। हरिभजन में गुणने का एक सूत्रीय फार्मूला सरलीकरण की प्रकाष्ठा लगती थी। वैसे बहुत दिया देने वालों ने तुझको, आंचल भी में न समाये तो क्या कीजिए, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान के समानांतर, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, और भूखे भजन न हो ही गोपाला का यथार्थवादी विमर्श भी पल्लवित होता ही रहा है। और अब तो मुक्ति का अर्थ इतना फैल गया है, अब तो बेल हैल गई आनंद फल होई। आध्यात्मिक मुहाने से भले ही शुरू हुआ हो मुक्ति का कलकल निनाद, घाट घाट का पानी पीती पिलाती घोलती गुलाती, अब इसकी धारा चलती है, इसका अर्थ राजनीतिक उदासता से मुक्ति होता है। पर वहां भी यह ठहरती नहीं, आर्थिक मुक्ति, जात पात धार्मिक घेरेबंदियों जकड़नों से मुक्ति और अंततः देह मुक्ति के प्रश्नों से सीधी आ जुड़ती है। इसमें अब कोई शक नहीं रहा कि हम एक साथ कई घरों में रहते हैं, एक घर हमारा शरीर है, एक परिवार, एक मोहल्ला, एक संप्रदाय, एक शहर या गांव, एक देश, एक इतिहास, हमारी भाषा, हमारी संस्कृतियां, हमारे सपने भी एक घर ही है। इतने सारे घरों में रहने वाली यह अकेली बुढ़िया दाई अस्मिता दोस्तोवस्की के क्राइम एंड पनिशमेंट की उस बुढ़िया दाई की याद दिलाती है जिसकी हत्या क्रांतिकारी नायक इस सफाई से करना चाहता है कि कोई सुराग न मिले, और इस तर्क पर कि इतना बड़ा खजाना बटोर कर यह बुढ़िया करेगी क्या, मारो इसको, धन छीनो और जरूरतमंदों में बांट दो। सब प्रकृति चेता लगे हैं सात घरों में रहने वाली इस बुढ़िया दाई अस्मिता के पीछे। वे समझते हैं कि अस्मिता के प्रश्न रोटी के प्रश्न से बड़े नहीं हो सकते, उन्हें बस इतना ही याद दिलाने की जरूरत है कि सिर्फ साधन हीनता किसी गरीब के दुख का कारण नहीं होती, उसके दुख का कारण होता है अवमाननाओं का अंत अनंत सिलसिला जो उसके कहीं कुछ नहीं होने से जगता है। साधनहीन तो पंडित मौलवी साधु संन्यासी और फकीर भी होते हैं, पर समाज ने उन्हें जिस सोपान पर बिछा रखा है वहाँ से उन्हें दुनिया की छोटी नज़र आती है, और जो मान सम्मान उन्हें बेवजह भी मिलता रहता है वह उन्हें मस्त ही रखता है। साधनहीनता उनका दुख नहीं बनती, मन मस्त हुआ तो क्या बोलें कि स्थिति में वे रहते हैं, क्योंकि अवमानना की राजनीति उन्हें नहीं डसती। उनकी साधनहीनता ऐच्छिक है, वह उनके अपमान का साधन न बनकर उनके सम्मान का साधन बनती है तो उसका उनको दंश क्यों होगा। इसे एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है कि पेट की आग के बराबर ही तपिश अपमान की ज्वाला में होती है। जो गरीबों, दलितों, स्त्रियों, अल्पसंख्यकों, बिहारियों, अश्वेतों, विकलांगों की अस्मिता लगातार हताहत रखती है, अपने ही देश, अपने ही समाज में दूसरी श्रेणी की नागरिकता झेलते अस्मिता आंदोलन से जुड़े ये सारे उपसमूह ओढ़ में खाज की तरह आर्थिक संकट और अस्मिता पर प्रहार साथ साथ झेलते हैं, राजनीतिक शरणार्थियों और अन्य विस्थापितों के ही समानांतर। यह कारण नहीं है कि वैयक्तिक विक्षोभों को घर, संस्कृति और भाषा के सामूहिक विक्षोभ में प्रतिच्छायित देखता है स्त्री आंदोलन। वह मानता है कि संस्कृति, इतिहास, परिवार और निजी अस्मिताएं होती हैं पुश्तैनी घर बेचने के समय किसी देवदार की पेटी में अचानक ही मिल जाने वाले पुराने कागज पत्रों की तरह, एक दूसरे से चिपकी हुई पीली जर्जर परत दर परत नत्थी। इसलिए स्त्री लेखन में भी मुख्य स्पंदक की भूमिका स्मृतियों की होती है। इसलिए स्त्री लेखन की प्रिय तकनीक है टेलीस्कोपन, दूर की चीजें पास लाकर दिखाना। स्मृतियों का फलक खुलता है किसी बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर और धीरे धीरे संकीर्ण होता हुआ मानसिक या पारिवारिक विघटन पर आ ठहरता है। इसी बिंदु पर घट जाता है गठबंधन निजी और सार्वजनिक का। वैयक्तिक तकलीफों का सामाजिक संदर्भन, सुख दुख में साथ खड़ा होने का उदात्त सखी भाव स्त्रियों में नैसर्गिक होता है। तभी तो जो जहां परितप्त है स्त्री आंदोलन अपने आंचल की छाया में उसे समेट लेता है। 1980 में लिबरल फेमिनिस्ट पर मानविक निःशस्त्रीकरण के मुद्दे से जुड़ी 7वें-8वें दशक में रेडिकल फेमिनिस्ट जुड़ी ब्लैक मूवमेंट से 9वें दशक में दलित आंदोलन और पर्यावरण रक्षक अभियानों से उनका स्पष्ट जुड़ाव रहा है, और पर्यावरण के प्रश्न को भी इको फेमिनिज्म इधर एक नया आयाम दे गया है। अपनी आदिशक्ति का स्रोत इको फेमिनिस्ट प्रकृति में ढूंढती है शक्ति जो पदानुक्रम ग्रस्त जीवन से नहीं सामंजस्य परक जीवन से आती है। अभी स्त्रियां भूमंडलीकरण के खिलाफ संघर्ष करके तीसरी दुनिया के साधनहीन लोगों की चिंता में पड़ी हैं। सार सार को गहलियो थोथा देहे उड़ाए, अटक बीन कर थोथा उड़ा देने और सार ग्रहण करने वाले घरेलू सूप में स्त्रीवाद अपना मॉडल देखता है। तभी तो वैकल्पिक स्रोत विश्लेषण में उत्तर औपनिवेशिक साम्य दर्शन में मार्क्सवादी, भाषिक विश्लेषणों और अस्मिता विषयक अवधारणाओं में उत्तर संरचनावादी है। मौखिक साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य और देसी परंपराएं, रीति रिवाज और मिथक ज्ञान प्रत्याख्यान के वैकल्पिक स्रोत हैं। स्त्रीवाद ने संभव बनाया है इस प्रत्याख्यान के वैकल्पिक स्रोतों का संधान और इतिहास लेखन का प्रजातंत्रीकरण। घरेलू चिट्ठियों, तस्वीरों, कथानकों, अर्धकथानकों और अन्य अनादृत दस्तावेजों के आधार पर कैलोनिकल और कोलोनियल दोनों पर चिमटे की चोट की है। आज एक चौथी दुनिया भी उभरी है, ऑस्ट्रेलिया की एबोरिजिन्स, न्यूजीलैंड की माओरी स्त्रियां, भारत की आदिवासी और दलित स्त्रियां इनमें हैं, और भी बहुत सारे उप विभेद बनते हैं। राजनीतिक विस्थापन के शिकार औरतों, युद्ध और दंगे की सताई औरतों, वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर औरतों के, सबकी विशिष्ट समस्याएं हैं और सबको एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। पितृसत्ता की भाषा में कहें तो स्त्री सत्ता तो खैर किसी को भी लाठियों से हाँकना नहीं चाहती, सबसे मिलजुल कर रहना चाहती है। वर्ण, वर्ग, नस्ल, धर्म, संप्रदाय हमने नहीं बनाए, इसलिए विभाजक रेखाएं हमारी संघ शक्ति का तन्वीकरण न करें। कुल मिलाकर ये कहें कि स्त्री दृष्टि थोड़ी अलग तो होती है, थोड़ी ज़्यादा महीन भी। मन हो रहा है कि महीन का तुक जहीन से मिला दूं, पर ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि बहुत जहीन या रैशनल होना ही हमारी समस्याओं की जड़ है। आधुनिक विकास, सभ्यता का विकास ही एकांगी हुआ है। हृदय पक्ष यहाँ अनादृत रहा है। गिर गिरहकट सफलता के लिए मारे हुए हम एक नई दिशा में नई तरह के स्प्रिटस मुंडी स्फिंक्स या नरसिंहावतार आधा पशु और आधा मनुष्य हो गए हैं, या आधे मशीन और आधे पशु। पशुओं में भी कोई हिंस सिंह, कोई घोड़ा, तो कोई रैटरेस का चूहा। इसके बारे में अपने एक अमेरिकी दोस्त को चिट्ठी लिखी तो वह बहुत हंसी। इवन इफ यू विन द रैट रेस यू रिमेन अ रैट। वाकई मन में यह बात बड़ी साफ थी कि सामाजिक जीवन और वैयक्तिक जीवन में भी जो विसंगतियां हैं उसका मूलभूत कारण है मेल प्रिंसिपल और फीमेल प्रिंसिपल, एक्स फैक्टर और वाई फैक्टर, बुद्धित्व, न्याय और करुणा के बीच का असमंजन। स्त्री दृष्टि का वाहक स्त्री ही होगी और पुरुष दृष्टि का वाहक पुस्त्री ही पुरुष ही। ऐसे ही स्टीरियोटाइप में मेरा विश्वास नहीं है। रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद और भी कितने चिंतक, मनीषी और लेखक हुए हैं जिनकी दृष्टि माँ की दृष्टि थी और भाषा माँ की भाषा। पर विवेकानंद की भाषा में भाषण धर्मिता थी, एक अकड़ एक मजिस्ट्रेसी थी। विवेकानंद की मूछ भले ही नहीं हो पर उनकी भाषा मुच्छण भाषा थी। वह डांटती बहुत थी, डांटने फटकारने वाले बाप की भाषा, नो नॉनसेंस भाषा, कान पकड़ भाषा। अब कहाँ चल पाएगी दोस्तों, प्रजातंत्र गहरा गया है। भाषा और दृष्टि का संबंध नाभि नाल वाला है। बिंब और शब्द चयन, प्रवाह, टोन और डिक्शन सबकी अलग ही ठसक और ठाट है। कहाँ कहाँ से शब्द और संदर्भ ले आती है स्त्री भाषा। देवदार की पेटी से जैसे कि पुराने बर्तन, पुराने मुकदमे के कागज, अजब गजब लोकोक्तियां, लोरियां और लोकगीत। भाषा की दीवार पर हाथों की मटियाली थपकन से सपनों और जाति स्मृतियों का अहिवात लिखती है स्त्रियों की भाषा। स्त्रियां न हो तो भाषा की जाति अनुगुजे ही गायब हो जाए। अकारण नहीं कि नानी दादी, घर या मोहल्ले की वृद्धाओं की संगति में पलने वाले बच्चों की भाषा में एक अलग अनुगूज होती है। भाषा के साथ मातृ का प्रयोग उसे एक अलग तरह की ताकत देता है। माँ के दूध की ताकत, बतरस की लहक, आंचल का दूध, आंखों का पानी और बतरस तीनों मिलजुल कर भाषा को दशमलवरिष्ट और ग्राइप वाटर पिला देते हैं। नवजातक की तरह अपनी जंघा पर पलट उलट कर भाषा की तेल मालिश स्त्रियां करती हैं। अनौपचारिक सी उमंग और संवाद धर्मिता डेमोक्रेट के गुण हैं। कंधे पर हाथ रखकर घरेलू बिंबों में सहज ढंग से कोई डेमोक्रेट ही बतिया सकता है। इससे यह सहज प्रमाणित होता है कि स्त्री दृष्टि एक प्रजातांत्रिक दृष्टि है और आज प्रजातांत्रिक दृष्टि और प्रजातंत्र की जरूरत स्वयं सिद्ध है। शिक्षा दीक्षा के अभाव या परिस्थितिजन्य कुंठाओं के कारण कुछ स्त्रियां विशेष परिस्थितियों में पितृसत्तात्मकता के एजेंट जरूर बन जाती हैं, जैसे कि गुजरात के दंगों में बनी। पर मूलतः स्त्री दृष्टि अहिंसक दृष्टि है और फ्रांस की वैभवशाली क्रांति के बाद का एकमात्र अहिंसक आंदोलन स्त्री आंदोलन ही है। अपवादों को जाने दीजिए, पर धनी गरीब, ऊंच नीच, काले गोरे का फर्क मिटाकर ही स्त्रियां सहज भाव से एक दूसरे से गले मिलती हैं। यही है सार्वभौम भगिनीवाद। दुनिया के सारे अनादृत समूहों, गरीबों, दलितों, विकलांगों, बूढ़ों को सहज भाव से स्त्रीवाद अपने आंचल में समेट भी रहा है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो स्त्री मुक्ति में सबकी मुक्ति है। उस जैसे एक स्त्री को शिक्षित करना पूरे परिवार को शिक्षित करना है, स्त्री की मुक्ति भी एक साझा चूल्हा है, ऐसा जानिए। इसको कि आधुनिक विज्ञान EQ कहता है। उससे सम्मिलित स्त्री दृष्टि पर दुख कातर और महीन जो होती है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वायु गुणसूत्र उसकी जीन में नहीं होता, बल्कि इसलिए भी कि दुनिया के सारे महीन काम उसको शुरू से ही करने पड़े। दुनिया पर पुरुषों का आतंकवादी प्रशासन भले ही काबिज हो, कम से कम बच्चों के दिल और आत्मा पर एक छत्र राज माँ का ही होता है। माँ, प्रेमिका, पत्नी, शिक्षिका, किसी न किसी रूप में हर परिष्कृत पुरुष का सौंदर्य बोध या नैतिक चरित्र एक औरत ही गढ़ती है। देह के अलावा मन भी एक खास तरह की नैतिकता के गर्भ में औरत ही पालकर बड़ा करती है। स्त्री दृष्टि से नाता टूटा नहीं कि पुरुष के रसातल में औरत काम करते करते भी गा बतिया सकती है। वह एक साथ बहुत तरह के काम कर सकती है, क्योंकि वैज्ञानिक शोधों का निष्कर्ष है कि उनके दाएं और बाएं मस्तिष्क एक साथ काम करते हैं और इसलिए उनका दिमाग संतुलित भी ज़्यादा होता है। दुनिया के हर देश का ऊर्जस्वी लोक साहित्य और अब तो शिष्ट साहित्य भी कपड़े पछीटती, पालने डुलाती, धान कूटती, चक्की चलाती औरतों का अवदान है। वर्ण, वर्ग, नस्ल, राष्ट्रीयता सापेक्ष कुछ विशिष्ट समस्याओं के बावजूद विश्व भर की स्त्रियां भगनी भाव से जुड़ी इसलिए हैं कि दैहिक, मानसिक और आर्थिक शोषण से जुड़ी उनकी ज़्यादातर समस्याएं और इनकी मानसिक बनावट भी मिलती जुलती है। लेकिन बात मैं यह कह रही थी कि पांचों इंद्रियां एक साथ सजग हो जाती हैं, स्त्री लेखन में और जीवन में भी। पांचों इंद्रियां एक साथ सजग रखने की सिनेस्थेसिया तकनीक भी स्त्री दृष्टि का बहुत बड़ा अवदान है, जो इस चिंतन को एकांगी नहीं बनाने देता और इसे चीज़ों को समग्रता में लेना सिखाता है, दूसरों के पक्ष में सोच पाने की क्षमता उसमें विकसित करता है। स्त्री मुक्ति का साझा चूल्हा। दुनिया के दो आदिम दुख हैं, भूख और अपमान। लात पेट पर पड़े या पीठ पर, तकलीफ बराबर होती है। महापंडित सिखाते हैं दुधारू गाय की लथाड़ भली पर, जो यह सिखाते हैं उन्हें फेंक कर रोटी दी जाए, उनके अधिकार उन पर कृपा की तरह बरसे तो उनको कैसा लगेगा। फिर यह तो ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहाँ प्रशासन की गोमाता पिसुड़ी पड़ी है, लात मारती है और दूध भी नहीं देती। कितनी औरतों, लड़कियों, कितने दलितों, आदिवासियों को दिन भर की खटने के बावजूद दो बार चाय भी मैसर नहीं होती। मैसर हो भी जाती है तो कृपा भाव से टूटे गिलासों, बिना कान के कपों में। बिना कान के वे कप संकेतित हैं, बिना कान की तो यह पूरी व्यवस्था है। पहली औटन की चाय वे पीते हैं, दूसरी औटन की चाय हम। सामंती परिवारों में तो अब एक बड़े थाल में मालिक का खाना परोसा जाता है, इतना ज़्यादा परोसा जाता है कि उसके जूठन पर पल जाएं स्त्री और कामगार दलित। अब जब तक अंक शायनी है, पत्नी पर थोड़ी कृपा यह होती है कि यदि उसको कटहल की सब्जी या तिलौड़ी पसंद है तो उसे एक व्यंजन की परसन उसके स्वामी जरा ज़्यादा ही लेते हैं, ताकि वह भरपूर छूटे और मन भर खा पी कर कमरे में पैर दबाने समय से पहुँच जाए पत्नी। पैर दबाने या सेवा कर देने में कोई हर्ज नहीं, मगर तब तक जब तक सेवा पारस्परिक हो। कभी जब पत्नी बीमार हो तो उसके भी दबा दिए जाए ना हाथ पैर। प्रेम का कोई व्याकरण नहीं होता, किंतु प्रशासन का होता है। ज़्यादातर स्त्रियों को अपने पतियों से और दलित आदिवासी कामगारों को अपने अधिपतियों से यही तो मूल शिकायत है कि वे ज़्यादा प्यार नहीं करते। उनकी सारी कार्यत्री ऊर्जा पत्नी और अन्य मातहतों के नियंत्रण में ही खर्च हो जाती है। वे न प्यार देते हैं न पगार। दिन भर की खटनी का हासिल क्या? डांट मार फटकार, गाली गलौज, यौन शोषण और गहरी उपेक्षा। अस्मिता की लड़ाई मुख्यतः स्वाभिमान की लड़ाई है। महापंडित कहते हैं, भूखे पेट भजन न हो ही गोपाला। स्वाभिमान लेकिन कोई लग्जरी नहीं है कि पेट भरा रहने पर ही सूझेगा। क्या होता है स्वाभिमान? या उन स्त्रियों उन दलितों से पूछिए जो मान में कई कई दिन भूखे रह जाते हैं और फिर थक कर बिना मनाए काम पर लौटते भी हैं, तो एक नए रूप में प्रतिघात के उपयुक्त अवसर की ही प्रतीक्षा में एक नए संकल्प के साथ, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। वर्ग संघर्ष से जुड़े लोग लिंग चेतना या जातीय चेतना की बात करने वालों से गुस्सा है। उन्हें लगता है कि आर्थिक साम्य, लिंगगत और जातिगत कुटिलताएँ स्वयमेव ध्वस्त कर देने वाली जादुई छड़ी हैं और अपने पिंडफली अपना अपना राग संघ शक्ति का तन्वीकरण ही करते हैं। जो वे कहते हैं उसका सारांश है कि लंबी रेस का घोड़ा क्षुद्र स्वार्थ सिद्धि में पड़े अगर तो उसकी वही गत होती है जो अटलांटा की हुई थी। अस्मिता आंदोलनों से उनकी नाराजगी का सार यही दी एक कथा सूत्र में व्यक्त करें तो यह कहेंगे कि वे अटलांटा वाले लाभ लोभ में पड़ गए हैं। अटलांटा पीटी उषा जैसी तेज धावक थी प्राचीन ग्रीस में। जब सीधे नहीं हारा पाए उसके प्रतिस्पर्धी तो उसकी राह में सोने की खूबसूरत बालें बिखेर दी। दौड़ती दौड़ती वह सुनहरी गेंद चुनने को झुक पड़ती हैं और स्पर्धा आगे बढ़ जाती है। अस्मिता का प्रश्न स्वर्णाभ है तो जरूर, लेकिन राहों में डुगुर डुगुर करता सा नहीं पड़ा रहता है। या और सामाजिक न्याय या मानव अधिकारों के प्रश्नों की आसन्न प्राथमिकता आर्थिक मुद्दों पर छिड़ी बृहत्तर जंग के प्रति कहीं कोई अनास्था नहीं व्यक्त करती। आज की तिथि में आर्थिक मुद्दों पर बहस भूमंडलीकरण पर बहस है। तीसरी दुनिया के वंचित जनों के पक्षधरता जब तक इस भूमंडलीकरण से नहीं सधती तब तक वे इसके एक ध्रुवीय चरित्र पर शंका तो व्यक्त करेंगे ही, इसे अनुकूलित करने को भी जी जान भी लगा देंगे। पर आर्थिक स्तर पर साम्य भी औरत और दूसरे दलितों को अपमान की लंबी श्रृंखला से मुक्ति नहीं देता। एंगल्स ने ठीक ही कहा था कि बुर्जुआ की सुविधाएँ जुड़ते ही सर्वहारा बुर्जुआ मूल्य भी आत्मसात कर लेता है। संपन्न दलित भी विपन्न और अन्य दलितों, अपनी और अन्य स्त्रियों के प्रति धुआती हुई वाचिक, मानसिक और दैहिक क्रूरताएँ उसी तत्परता से निभाते हैं जिससे सवर्ण पित्त सत्ताक यही हाल नगरी चूटा आंदोलन की शानदार सफलता के बावजूद अश्वेत पुरुषों का है। क्या है स्त्री दृष्टि? इराक युद्ध के समय एक तस्वीर हिंदू के मुख्य पृष्ठ पर छपी थी। 10 महीने का इराकी बच्चा मुंह उठाए रो रहा है और उसकी पीठ 8 बरस की बहन, जो खुद भी बम से उतनी ही आहत है, अपना रोना भूल कर उसे चुप करा रही है। स्त्री दृष्टि का यह एक व्यंजक उदाहरण है। अमूमन यही करती हैं स्त्रियां, किसी भी परेशानी में अपना रोना भूल जाती हैं और उठ खड़ी होती हैं मृत्यु की विभीषिका के खिलाफ। विश्व युद्ध के भीषण संहार के बाद पश्चिम का समाज एक बड़ी हद तक विधवाओं, वेश्याओं, वियोग दग्ध नर्सों, लाचार माओं, परेशान हाल बहनों और बेटियों का समाज रह गया था। कुछ दिन तो समझ में ही नहीं आया कि इस जीवन का करना क्या है। भावनात्मक स्खलन और सामाजिक असुरक्षाओं के बाद छोड़ भी दें तो रणभूमि से एक तार आने का मतलब था मनी ऑर्डरों के सिलसिले थम जाना। पर उद्दाम हिंसा के बीच भी स्त्री की सृजनात्मक शक्ति अपनी नई राह बनाती रही। जॉन स्टेनबेक के उपन्यास द ग्रिप ऑफ रॉथ का वह दृश्य एक रूपक की तरह ले तो मरे हुए बच्चे के वियोग में दूध से फटती छाती अपनी छाती भूख से मरे जाते एक अनजान आदमी के मुंह में लगा देने में भी स्त्रियां नहीं चूकी। युद्ध के खिलाफ हाथ उठाकर दुआ करती सारी इराकी महिलाओं की तरह एक तरह की रफिया फकीर ही थी। एक हाथ में लुकाठी है मेरे, दूसरे में पानी का मटका, एक से चली हूँ बहिष्त राख करने, दूसरे से लपटे बुझाने दो जख्खे। साहित्य में स्त्री दृष्टि की जरूरत। हमारे मोहल्ले में एक बड़े मजाकिया बाबा थे। देहरी पर खाट डाले बैठे रहते और आते जाते जब तब हमें रोक कर किसी पहले में उलझा देते। बाबा के झोले की एक पहेली थी, एक आंख से एक मील देखते हो तो दो आंखों से कितने मील देखोगे। कोई बच्चा चटाक से बोलता दो तो हो करके खूब हंसते। उनकी वो पोंपली हंसी बहुत याद आई जब उस दिन किसी ने स्त्री दृष्टि की बात की। एक आंख से एक मील तो दो आंख से भी एक ही मील, पर एक से दूसरी संबलित तो होगी। एक से दूसरे को बड़ा सहारा रहता है। प्रकृति ने दोनों आंखें एक ही सतह पर बिठाई हैं, कुर्ते के बटन की तरह ऊपर नीचे नहीं बिठा दी। वैसे तो बात हमें आँख की नहीं दृष्टि की करनी है, इसलिए नजरिए की पर एक ही धरातल से। समाजशास्त्रीय निष्कर्षों पर स्त्री विमर्श के 3 पक्ष हैं। स्त्री लेंस से देश दुनिया की और स्वयं स्त्री के देह मन की कोई नई समझ का विकास, विकास के नए मॉडलों की तलाश जहां कोई किसी पर हावी न हो, न प्रकृति का दोहन हो, न मनुष्य का विकास के अवसर सबको बराबर मिले, और करुणा सम्मिलित न्याय दृष्टि का पल्लवन हर तरफ हो, यानी कि युद्ध और दंगा, घरेलू और बाहरी आतंक धर्मिता, बहुविध हिंसा और असंतुलन धीरे धीरे जनजीवन से और वैयक्तिक जीवन से तिरोहित हो जाए। फ्रांसीसी क्रांति ने भाईचारे की बात की थी। स्त्री विमर्श बहनापे की बात करता है। उसके अनुसार मनुष्य मात्र में मातृदृष्टि का विकास सबके हित में है और वर्ग, वर्ण, नस्ल, धर्म आदि कृत्रिम विभेदों के पार विश्व भर की स्त्रियां बहने हैं। हर वर्ग, वर्ण, नस्ल, धर्म की स्त्रियों की कुछ समस्याएं विशिष्ट भी हैं, पर देह सबके शोषण का प्राइम साइट है। बलात्कार, इंसेस्ट, खून, यौन शोषण, प्रेमहीन विवाह बंधन, घरेलू बेगार, मारपीट, गाली गलौज, साफ सुथरे और सुरक्षित प्रसव का अभाव, पर्दा, सती, डायन दहन, पोर्नोग्राफी, पणयीकरण, कूड़ में खाज, यह कि भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी हर वर्ग, हर वर्ण, हर नस्ल, हर धर्म की ज्यादातर स्त्रियों की खातिर गूलर का फूल है। कम खाओ, कम पियो, गुड़िया जैसी दिखो, ससुराल मायका कोई तुम्हें एक कोना अपना न दे, रह रह कर कहे गेट आउट, शट अप, फिर भी सबकी सेवा में बस जुटी रहो। नहाओ तब दूधो नहाओ जब पूतो फलो, यदि बेटी जनी तो जहालतों में नहाओ या चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो। ऐसी भयानक इस दुनिया में कहीं कोई परिवर्तन लाएगा तो विचार है। विचार विमर्श, स्त्री विमर्श रश्मिता की गुत्थियों को भाषा में परावर्ती देखता है और चाहता है प्रक्षालन धर्म ग्रंथों का, कानून का, दृष्टि का, आचार का। अलग अलग आयाम। वैसे तो भारतीय चिंतन धारा में और लोकगीतों में भी स्त्री अस्मिता का महोच्चार दिखाई देता है, किंतु विधिवत ढंग से इस शास्त्र का विकास पश्चिम में हुआ। 2 विश्वयुद्धों के बाद जब पश्चिमी समाज में पुरुषों का प्रतिशत घटा, ज्यादातर घर पुरुष विहीन हो गए, घर चलाने के लिए स्त्रियां सड़क पर आईं और शेक्सपियर की प्रसिद्ध पंक्ति चरितार्थ हुई, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। प्रसाद से शब्द उधार लेकर कहें तो मंगलमय विभु अपने अमंगल में भी मंगल के बीज छुपाए रहता है। स्त्री अस्मिता के विकास का निर्णायक मोड़ था। धीरे धीरे जब महसूस किया जाने लगा कि मुसीबत के वक्त के लिए ही सही औरत को गुड़िया कलेवर से बाहर निकालने लायक शिक्षा वगैरह दे देनी चाहिए। पश्चिमी शिक्षण संस्थान स्त्रियों से भरने लगे, स्त्रियां नौकरी करने लगी और बड़े फैसले देने लगे। लिबरल फेमिनिस्टों ने निशस्त्रीकरण का नारा दिया, रेडिकल फेमिनिस्टों ने रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज उठाई। शुरू से स्त्री आंदोलन के ध्येय बृहत्तर रहे, सिर्फ स्त्री दशा के सुधार तक यह सीमित नहीं रहा। भारत में गांधी जी ने शुरू से स्त्री शक्ति के राजनीतिक विनियोग की प्रज्ञा दिखाई। स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों का महत्व अक्षुण था। पिकेटिंग, जेल भरो अभियान आदि में तो था ही, भारत की माता के रूप में अवधारणा घोरी बाहिरे की विमला आदि चरित्रों में पोर्शिया और सावित्री का मणिकांचन संयोग घटित करने की कोशिश के पीछे भी गांधी की इस स्त्रीवादी मान्यता का योगदान है कि बल का अर्थ यदि पशु बल है तब तो स्त्रियां पुरुषों से कमतर हैं, यदि उसका अर्थ बुद्धि बल और नैतिक बल है तो वे इनसे 20 हैं 19 नहीं। गांधी जी से बस थोड़ी सी विनम्र असहमति के साथ मैं इतना भर जुड़ना चाहूंगी कि महाशय बुद्धि बल और नैतिक बल में ही नहीं दैहिक सामर्थ्य में भी स्त्रियां पुरुषों से 20 ही हैं। पुरुष शरीर प्रसव पीड़ा जितनी गंभीर पीड़ा झेलने में अक्षम है, हल्की बुखार में भी उसको तो फूस रख जाती है। नहाया धोया खाया पिया मुस्कुराता बच्चा तो उनसे उठाते नहीं बनता, रोता झिझकता रिरियाता बच्चा क्या खाकर पालेंगे। संयम सहिष्णुता आदि गुण उनमें इतने कम होते हैं, काम और क्रोध का ऐसा सरप्लस होता है कि तरह तरह के रोग भी उनको जल्दी घेर लेते हैं। लचीलापन उनके देह मन दोनों में कम होता है, घर बाहर दोनों के काम वे साध कर तो देखें, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और फिर भी स्त्रियां उनसे बैर नहीं करती। आखिर वे उनके ही पैदा किए और पाले हुए हैं, वे उनका सही प्रशिक्षण चाहती हैं। स्त्री विमर्श इसी प्रशिक्षण का निवेदित शास्त्र है जो पितृसत्ता के उकसाए पूर्वग्रहों से मुक्ति चाहता है उनकी और पूरे समाज की।